नई सुबह से आगे वीणा के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया। देव गया, अरुण मिल गया। पिछले कुछ वर्ष कई जन्मों का लेख समेट लाए थे। एक जन्म था देव से शादी से पहले का, जो अब दूर का सपना लगता है, जो जन्म कभी था ही नहीं, जो वीणा के इस चोले ने कभी देखा ही नहीं, बस उसकी कल्पना मात्र ही कर सकती है। कल्पना है, कहीं था वह अल्लड़पन, कहीं थी वह मस्ती, कहीं थी वह खुशी, वह उमंग, वह तरंग, सब एक छलावा मात्र ही लगता है। अब वे दिन कभी नहीं आ सकते, आएंगे भी तो अपने ना लगेंगे। दूसरा जन्म था देव के साथ का, दो वर्ष का साथ, दो जन्म सा है, शायद उससे भी ज्यादा। देव के साथ बिताया एक एक दिन, एक वर्ष समान था। दुख था उसका, लेकिन आशा थी, साथ जीने की उमंग थी। डर तो उस आशा, उस उमंग, उस लग्न को देखकर कहीं छुप सा गया था। तभी तो देव के साथ रहते वीणा ने रोज नए सपने बुने थे, और तभी तो देव के जाने के बाद भी उसने अमित और प्रिया का विवाह रचाया था। अपने हाथों से उसने प्रिया को मेहंदी लगाई थी, अपने हाथों से उसने उसे विवाह का जोड़ा पहनाया था। वीणा का तीसरा जन्म अब शुरू हुआ है। अरुण के आने पर विवाह के बाद वीणा को कोई ससुराल नहीं मिला। इस बार पिता का घर तो अरुण के लिए कांटों की सेज से कम ना था, उससे तो उसका संबंध भी ना था। अरुण की मां अकेली छोटे से किराए के फ्लैट में रहती थी। कभी किसी बेटे ने उसे अपने साथ रखने की पेशकश ना की थी, ऐसे में उसे भी किसी का बोझ बनकर रहना मंजूर ना था। दिल्ली पहुंचकर वीणा को आशा थी उसकी आरती होगी, कोई स्वागत को खड़ा होगा उसका पहले से, शायद शहनाई बजे, इसकी भी कल्पना कर ली थी उसने। वीणा कुछ अधिक ही आशावादी थी, आशा से अधिक आशावादी होना ही दुखों का मूल कारण है, इसीलिए उसे सब अच्छा ही दिखाई देता था। लेकिन ये क्या, टैक्सी तो बजाए कृष्णा नगर जाने के सीधा दरियागंज स्थित आगरा होटल पहुंच गई। अरुण के मित्र ने पहले से ही कमरा रिजर्व करवा लिया था उसके लिए। चाय पीकर मां अरुण के मित्र के साथ चली गई। जाते जाते बस इतना ही बोली, देहरादून वापस लौटने से पहले मिलना जरूर। वीणा को कुछ समझ नहीं आया, बस जी भर कह सकी। अरुण और वीणा अब अकेले रह गए थे। अरुण रोमांटिक हुआ जा रहा था, लेकिन वीणा चिंतित थी, रह ना सकी चुप और बोली अरुण से, क्या हम यहीं रहेंगे? हां, और कहां, मेरे कनाडा जाने तक। अरुण ने सहज भाव से कहा, ऐसा क्यों, क्या हम मां जी के साथ नहीं रह सकते? यहां होटल में बहुत अटपटा लगेगा। वीणा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है अरुण। अरे कैसा अटपटा, मैं परदेसी हूं, बाहर से आया हूं, और कुछ दिनों बाद तुम्हें भी परदेश जाना है, ऐसे में होटल में रहना ही ठीक है। मां के एक कमरे के फ्लैट में कैसे रह सकते हैं? अरुण अब भी नहीं समझ पा रहा था वीणा की मनोदशा को। वह तो ठीक है, लेकिन आपके रिश्तेदार हैं सब यहां, मामा हैं आपके, पहले तो आप वहीं ठहरे थे, अब शादी के बाद एकाएक उनके पास ना रहने का क्या कारण है? वीणा की बात बीच में ही काट दी अरुण ने, भाई सबको रोज रोज तंग तो नहीं किया जा सकता, और हमें भी प्राइवेसी चाहिए। बेताब था अरुण, बात बदलना चाह रहा था, बोला अब छोड़ो इन बातों को, आओ मेरे पास बैठो। और अरुण ने वीणा को अपनी बाहों में खींच लिया एकाएक, लेकिन वीणा छटपटाकर हट गई। ऐसा क्या, अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अभी मैं परेशान हूं, मैं समझ नहीं पा रही अपनी स्थिति, शादी हो गई, आप कनाडा वापस जाएंगे, सब ठीक है, लेकिन मैं यहां अपनी सास के पास नहीं रह पाऊंगी, एक होटल में, वह भी गंदे से होटल में रहूंगी और यहीं से 10 दिन बाद वापस मायके लौट जाऊंगी। ऐसा नहीं जानती थी मैं, ऐसा नहीं कहा था आपने। वीणा की परेशानी अरुण को अटपटी लग रही थी, लेकिन पुरुष जब दीवाना होता है उस समय स्त्री की हर बात को मान जाता है, उसका गुणगान करता है, उसकी गुलामी करना चाहता है, लेकिन सब कामग्नि के रहते। ऐसा ही अरुण के साथ हो रहा था। बैठ गया वीणा के कदमों में और उसकी टांगों को अपनी बाहों के घेरे में लेकर बोला, तुम क्यों परेशान हो वीणा? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कमरा है उसके पास, हम रहेंगे वहां, या मां, और मां अपनी गरीबी नहीं दिखाना चाहती तुम्हें। राय बहादुर की बेटी, राय बहादुर उत्तम प्रकाश की पत्नी, हवेली के होते छोटी सी कोठरी में अपनी बहू को नहीं ठहरा सकती। सब कुछ तो बताया था तुम्हें, अपना, अपने परिवार का इतिहास। वह भाव विवल हो रहा था, वीणा से लिपट जाने को बेताब बोला फिर से, और रही रिश्तेदारों की बात, सब रिश्तेदार दिखावटी हैं, डरते हैं अभी भी मेरे बाप से, इसीलिए वह शादी में भी शरीक नहीं हुए, और इसीलिए शादी के बाद मैं उनके घर नहीं जाना चाहता। अरुण एकाएक भावुक हो उठा, उसकी आंखें नम देखकर वीणा आश्वस्त हो गई। उसे अरुण ही अपना सब कुछ नजर आया, सोचने लगी, अरुण मेरा भला ही तो चाहेगा, वह जो कर रहा है ठीक है। मन को तसल्ली दी और मन की बात आशा की ज्योति जगा गई उसके मन में। बस वीणा उसी ज्योति के सहारे अरुण में समा जाने को बेताब हो गई। उसे प्यार करते यही लग रहा था कि यही कमी थी जो पूरी हो गई अरुण के आने से, और ऐसे में औरत भी 100 खून माफ कर देती है। 10 दिन बाद अरुण लौट गया कनाडा। जाने से पहले वीणा अपनी सास से मिलने गई कृष्णा नगर। घर देखकर उसके मन में अरुण की बात ठीक लगी। तंग गली में 100 गज के घर में एक छोटा सा कमरा और छोटा सा गुसल खाना और बरामदे में 3 शीत से बनी रसोई, कहां देहरादून में उनका 2 बीघे का घर और फिर देव का घर, और अब यह घर। अच्छा ही किया जो अरुण ने उसे वहां लाकर नहीं रखा, वह यहां ना रह पाती, मन ही मन घुटती रहती। ऐसे में अच्छा है कि कनाडा जाने तक वह अपनी मां के पास ही रहे देहरादून। अरुण के जाने के बाद जब मां को उसने सब बात बताई तो निर्मला फिर से चिंतित होकर कह उठी, बेटी मेरा दिल डर से तेज धड़कने लगा है तेरी बात सुनकर, कहीं जल्दबाजी में विदेश का चक्कर महंगा ना पड़ जाए, ना जाने वहां कैसे रहता होगा। तब वीणा के मन में जगी आशा की ज्योति फिर बोल उठी, अरे मां कैसी बात करती हो, देखो ना उसकी मां की मजबूरी भी तो है, किसी ने साथ नहीं दिया उसका, जो कुछ किया उसके साथ उसके पति ने, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, लड़ रही है अकेले, खुद के भाई भी डरते हैं उसके, और अरुण वह तो 25 वर्ष से कनाडा में है, डिग्री देखी है उसकी, बात करने का लहजा देखा है, इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर, कोई कमी नहीं होगी, मेरा अरुण कहीं किसी से कम नहीं होगा, मैंने इतने दिनों में ही जान लिया है। वीणा मां को तसल्ली दे रही थी, स्वयं को भी ऐसे ही दिलासा देती थी। अब अरुण की निशानी भी उसके पेट में आकर उसे गुदगुदाती जो रहती थी हरदम, उसने देव की छवि देख ली थी शायद अरुण में, या फिर देव को भूल जाने का रास्ता दिखा दिया था अरुण ने। अरुण की दीवानी सुबह शाम घड़ियां गिन रही थी कनाडा जाने की। जो दिन हम जीते हैं उस दिन का हिसाब दिन बीतने पर ही मिल पाता है, सुबह से शाम होने तक लगता है बहुत काम किया है दिन भर, थक कर घर लौटते हैं, आराम करते हैं नए दिन की शुरुआत के लिए, दिन दिन गिनते हैं और बीते दिनों का हिसाब लगाने का मौका नहीं मिलता। मिलता है कभी तो एकाएक महसूस होता है, अरे कितनी जल्दी समय बीत गया। जो पल पल कभी बोझिल लगते हैं, जो दिन कभी बिताए नहीं बीतता, वह सब व्यस्तता के साथ इतनी जल्दी बीत जाते हैं, इसका हिसाब भी नहीं रहता। सबकी अपनी दिनचर्या है, कर्म में इतनी तल्लीन है हर जिंदगी कि किसी को चिंता भी नहीं रहती दूसरों की। सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, एक दूसरे से जो बंधा है, एक दूसरे के पास जो है उसी पर ध्यान केंद्रित रहता है। आंखों से दूर जो बैठा है वह तो खाली समय में ही याद आता है, उसकी चिंता तो व्यस्तता में भी नहीं सताती। इसीलिए बच्चे अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, माँ बाप अपनी जिंदगी जीते हैं। कुछ खबर लगती है किसी अपने की तो चिंता होती है, वरना लगता है जैसे हमारी गाड़ी चल रही है वैसे ही दूसरों की चल रही होगी। मैं अच्छा हूँ तो जग अच्छा है, मैं दुखी हूँ तो जग दुखी लगता है, मेरा मन दुखी है तो दूसरे की हंसी अच्छी नहीं लगती। वीणा कनाडा में है, सुखी ही होगी, क्योंकि जब जब उसकी चिट्ठी आती है यही लिखा होता है। माँ को इसी से तसल्ली है, वीणा का अपना हंसता खेलता परिवार है, दो बेटियां एक बेटा, सब बच्चे कितने प्यारे हैं। उनके फोटो देखकर यही लगता है अब इससे ज्यादा कोई क्या जाने। हाँ, माँ निर्मला की एक ही इच्छा थी कि वीणा एक बार आए, मिल जाए सभी को। पन्नालाल भी यही चाहते थे, सब बच्चे छुट्टी के दिनों में देहरादून इकट्ठे होते थे, लेकिन वीणा की अनुपस्थिति सबको खलती थी। उसके जाने के बाद गीता की शादी भी हो गई, प्रेम ने भी प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन वीणा आने के नाम पर हमेशा टाल जाती। कैसे आ सकती हूँ, जिंदगी बहुत व्यस्त है, यही नपातुला बहाना होता था उसका। अरुण से कभी कभार अमित की बात होती थी, उसे तो एक ही बात करनी अमित से ध्यान रहती, यहां इंडिया में रखा ही क्या है, दुनिया कितनी आगे निकल गई है, हम इंडिया आकर क्या करेंगे। जो भी वहां से आता है यही बताता है कि कुछ भी नहीं बदला, सब काम अधूरे पड़े रहते हैं, हर जगह रिश्वतखोरी है, इतनी अधिक काम चोरी है। तभी तो मेरी माँ के जीते जी उसका कोर्ट का फैसला नहीं हो सका। मेरा बाप हमारी खानदानी जायदाद बेचकर अपने हरामी बच्चों को ऐश कराने में लुटा रहा है, कोई कुछ नहीं करता। मैं इंडिया आना चाहता हूँ, तभी जब कोई मेरी मदद करे, मेरे बाप को कानून के घेरे में लाना है। तुम यदि कोशिश करो तो यह काम हो सकता है, मैं तुम्हें पिटीशन बनाकर भेज सकता हूँ। क्या तुम मेरी अर्जी प्राइम मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर तक पहुंचाकर ऐसा ऑर्डर ले सकते हो कि वह अपनी पहली पत्नी और असली बच्चों के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में जेल चला जाए और मेरा हक मुझे मिल जाए। ऐसे में अमित यदि उससे कहता कि यह सब कुछ कितना और कैसे हो सकता है, इसका पता तभी लगेगा जब अरुण कुछ समय के लिए इंडिया आ जाए और अपने व अपने भाइयों के साथ मिलकर नए सिरे से केस फाइल करे। ऐसे में अरुण यही कहकर टाल जाता, चलो बनाऊंगा प्रोग्राम, लेकिन साथ ही उसका एक ही बहाना शुरू हो जाता। ऐसा इंडिया में हो सकेगा नहीं मालूम, यहां सब दकियानूसी लोगों का राज है। अमित भी तंग आ जाता था और बात समाप्त कर देता यही कहकर, आप ना जाने कौन सी दुनिया में रहते हैं अरुण जी, यहां सब बदल चुका है, लोग खुशहाल हैं, न्याय जरूर मिलता है यदि कोई कोशिश करे। आप आए यहां, जिस वकील से मिलना होगा मिलेंगे, लेकिन आपके वहां बैठने से कुछ नहीं हो सकता। बात वहीं खत्म हो जाती। वीणा तो फोन पर केवल हां ना में ही बात करती थी, अरुण हमेशा दूसरे फोन से सारी बातें सुनता रहता था, और ऐसे में बातें भी क्या होती, केवल यही कि सब ठीक है, बच्चे अच्छे हैं, मैं ठीक हूं, रोज काम पर जाती हूं। इससे आगे जितने मुंह उतनी बातें, घर में जब सभी इकट्ठे होते यही बातें होती रहती। अरुण कंजूस है, इंडिया खर्चे के कारण नहीं आना चाहता। शायद इतना स्टेटस ही नहीं है उसका कि खर्चा सहन कर सके। लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। पन्नालाल निर्मला बुढ़ापे की ओर बढ़ गए थे। सब परिवार फल फूल रहा था। प्रेम अब कर्नल बन गया था। गीता कॉलेज में लेक्चरार थी। अमित प्रिया व्यापार में काफी उन्नति कर चुके थे। 15 वर्ष बीत गए, वीणा के आने की कोई खबर नहीं थी। ऐसे में एक दिन अमित प्रिया ने प्रोग्राम बनाया गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका घूमने का, साथ ही कनाडा जाकर वीणा से मिलने का। अमित प्रिया और दोनों बच्चे उनके व्यस्त हो गए अपना प्रोग्राम बनाने में। सब कुछ तय हो जाने पर प्रिया ने वीणा को फोन किया। प्रिया ने अपने आने की खबर देते हुए वीणा से कहा, दीदी तुम तो आती नहीं, हम आ रहे हैं आपके पास। विश्वास नहीं हो रहा अपने कानों पर, सच कह रही हो? वीणा के शब्दों में अविश्वास झलक रहा था। हां दीदी, मैं, अमित और वरुण, स्निग्धा सभी। पहले 10 दिन हम आपके पास रहेंगे और फिर 1 महीना हम अमेरिका की सैर करेंगे। प्रिया के शब्दों में खुशी झलक रही थी। सच प्रिया, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। कब आ रहे हो? कौन सी फ्लाइट से? हम टोरंटो से 600 मील दूर हैं। मुझे जल्दी से सब बताओ। वीणा खुशी से एकाएक झूमने लगी थी। मैं सब विवरण फैक्स कर देती हूँ आपको। हम 18 मई को पहुंचेंगे टोरंटो। वहां स्वयं मैनेज कर लेंगे, हम रात तक आपके पास पहुंच जाएंगे। प्रिया ने अपना प्रोग्राम उसे बताया। वीणा को लग रहा था जैसे वह सपना देख रही है। खुशी से उसकी आंखें छलक गई, गला भर आया और बोली, मैं अभी से तुम सबकी प्रतीक्षा करने लगी हूँ। बहुत बहुत प्यार तुम सबको। जल्दी आओ, तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। और वीणा फफक उठी खुशी से, जैसे बहुत कुछ बातें करनी हो उसे प्रिया से। अभी से बेताब हो उठी थी वह। फोन रखकर वह अरुण से बोली, जो चुपचाप दूसरा फोन कान पर लगाए दोनों बहनों की बात सुन रहा था। देखो आखिर अमित प्रिया आ रहे हैं हमसे मिलने। तुम्हें मेरी खातिर अब उन्हें रिसीव करने जाना होगा टोरंटो। हाँ हाँ जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। फोन पर नहीं हो सकती बातें, अब विस्तार से बैठकर उससे बात करूंगा अपने केस के बारे में। लगता है वह बहुत बड़ा सेठ बन गया है। तभी तो 20-25 हजार डॉलर खर्च करने की योजना है उसकी इस टूर पर। अरुण भी उत्साहित था उसके आने की खबर सुनकर। जरूर करना अरुण, पर प्लीज सारा टाइम इसी चर्चा में ना लगे रहना, कहीं वह बोर ना हो जाए। वीणा शायद इस चर्चा से परेशान रहती थी। अरे अपने हैं, तभी तो बिन बुलाए आ रहे हैं, और फिर जब हमारे पास आकर रहेंगे तो बात तो कुछ करनी ही है। अपनों को ही अपना कष्ट बताया जा सकता है। अरुण अपनी कहानी सुनाने को बेताब था। कोई नया सुनने वाला उसे मिलने आ रहा था। चलो ठीक है, अब जैसे तैसे घर ठीक कर ले। बच्चे अभी स्कूल से लौटेंगे तो उन्हें भी यह न्यूज़ देनी है। सब खुश हो जाएंगे। वीणा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने अभी से दिन गिनने शुरू कर दिए थे। नई दुनिया, नया देश, एक नया परिवेश, नई नई मुखाकृतियां, लेकिन सभी अजनबी। भीड़ के रेले से बाहर निकलते सभी मन ही मन घबराए हुए थे। टोरंटो से 600 मील दूर जाना था। मन ही मन अमित इसी उधेड़बुन में था कि बाहर निकलते ही एक अधेड़ व्यक्ति, एक पहचाना सा चेहरा प्लेस कार्ड लिए खड़ा था, जिस पर लिखा था, अरुण बंसल आपका स्वागत करता है। मेहमान का नाम नहीं था, लेकिन अमित एकदम पहचान गया, यह अरुण ही है, वीणा का पति। अमित ने प्रिया को बताया, बच्चों ने भी सुना और सबने देखा उसी ओर। सभी के चेहरे से चिंता एकाएक लुप्त हो गई। लंबे सफर की थकान उड़नछू हो गई, थके हुए चेहरे खिल गए, हाथ पैर स्फूर्ति से भर गए और सबने हाथ उठाकर अरुण का अभिवादन किया। स्वागत है आप सभी का, गर्मजोशी से अरुण ने आगे बढ़कर अमित को गले लगाया, एक एक करके सभी से मिला। वरुण ने जब अरुण के पैर छुए तो वह भाव विभोर हो गया, जैसे उसे भूली बिसरी भारतीय परंपरा याद हो आई हो। आशा थी आपको कि मैं यहां मिलूंगा, अरुण ने पूछा। इमिग्रेशन पर पहुंचकर एकाएक ना जाने क्यों प्रिया को कहा था मैंने कि आप बाहर मिलोगे। अमित ने जो महसूस किया था वह बता दिया। सामान की ट्रॉली लिए सभी कार पार्किंग की ओर चल दिए। बाहर धूप थी, समय था दिन के 2 बजे का, तारीख वही थी जो कल अपने देश से चलते समय थी। समय की सुइयां ठीक 10:30 घंटे पीछे करनी थी। हमें घर पहुंचने में कितना समय लगेगा जीजा जी, प्रिया ने पूछा अरुण से। कम से कम 7 घंटे, चिंता ना करो सफर यूं ही कट जाएगा, रास्ता बहुत खूबसूरत है और फिर ढेर सी बातें करते हैं। आपकी पिछले 15 सालों की बातें हैं और मेरी पिछले 30 सालों की बातें हैं, 7 घंटे क्या 7 दिन भी कम है। अमित प्रिया को अच्छी लग रही थी अरुण की बातें। कार में बैठते ही बच्चे तो एकदम गहरी नींद में सो गए और अमित व प्रिया शिष्टाचार और अरुण के अपनेपन से बेहाल हुए नींद की बेहाली को भूले थे। 7 घंटे 7 युगों के समान थे प्रिया के लिए। बच्चे सोते रहे इस बीच अमित कभी सो जाता कभी उठ जाता। अरुण की बोलने की शक्ति देखकर प्रिया आश्चर्यचकित थी, वह तो टेप रिकॉर्डर की तरह 7 घंटे बोलता ही रहा, कुछ सुनने की शक्ति तो उसमें जैसे थी ही नहीं। प्रिया शिष्टाचारवश सुनती रही, लेकिन सच बात तो यह थी कि अरुण की कही सभी बातें केवल उसके कानों ने ही सुनी, कुछ याद रही कुछ भूली सी महसूस हुई। रास्ता बहुत सुंदर था, झीलों का देश था यह, हरे भरे उपवन, नीले पानी की भरी झीलें और मीलों लंबी सड़क, ट्रैफिक नाम मात्र। ऐसा सफर एक सुंदर स्वर्ग की भांति प्रतीत हो रहा था। रात 10 बजे आखिर वे सब घर पहुंचे। बाहर ही खड़ी थी वीणा, 15 वर्ष बाद एक दूसरे को देखकर भाव विभोर हो उठे सब। बार बार गले लगती बहनें, 3 बच्चे थे वीणा के, 2 लड़कियां 1 लड़का। प्रिया अमित उनसे मिलते रहे, वे अरुण और स्निग्धा से मिले, बस भावनाओं में बंधे सभी बैठे रहे। रात कब बीती पता भी ना चला। तुम्हें मिलकर ऐसा लग रहा है कई युग बीत गए, प्रिया को अपने सामने बिठाकर वीणा अपने बच्चों की तरह उसे सहला रही थी। बड़ी बहन थी प्रिया की, पूरे 8 वर्ष बड़ी, बचपन में प्यार से गोदी में उठाकर घूमती थी उसे। जब प्रिया स्कूल जाने को हुई तो उसकी चोटी भी बांधती थी, प्यार से कभी कभार उसके लिए अपने जेब खर्च से कुछ उपहार भी ले आती थी। और जब उसने अमित को पहली बार देव के साथ देखा था तो एकाएक प्रार्थना भी कर बैठी थी कि प्रिया को अमित सा ही वर मिले। वीणा के भाग्य में जो लिखा था वही हुआ, प्रिया के लिए उसने जो चाहा था वही मिला उसे भी। 15 वर्ष बाद मिले दीदी हम, वरुण 6 महीने का था, आज 10वीं में पढ़ता है। प्रिया भी भाव विवल अपनी बहन की ओर देखे जा रही थी। सामने रहो तो लगता है वक्त की रफ्तार बहुत धीमी है, आंखों से दूर रहकर वक्त का ध्यान ही नहीं रहता, वीणा ने बीते दिनों की यादों में खोए हुए कहा। हम अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, हमारा समय उसी में कट जाता है। जब कभी दिनचर्या से वक्त मिलता है, दूर बैठे अपने प्रियजनों की याद आ जाती है, तब समय को देखकर एकाएक हैरानी होती है। इतने दिन हो गए देखे अपने किसी प्रिया को। प्रिया भावुक है सदा से, आंखें छलक आती हैं उसकी झट से, अश्रु मिश्रित शब्दों से बोल रही थी, लेकिन हमारे बड़े, हमारे मम्मी डैडी, जिन्हें अब और कुछ काम नहीं है, उनसे पूछिए, हर समय आपको ही याद करते हैं, हमें तो मिल लेते हैं महीने दो महीने में, और आपको नहीं देखा इतने समय से, बस आप ही की बातें करते रहते हैं। वीणा कैसी होगी, उसके बच्चे कैसे होंगे, पति कैसा होगा, वह खुश तो है? उनकी दिनचर्या का एक बड़ा भाग तो आप ही की बातें करते बीत जाता है। आंसू अब बह निकले थे प्रिया के, भीग गया था स्वर उसका। डैडी तो आपको पता है कुछ ज्यादा नहीं बोलते, मम्मी बस हर बात में कोई ऐसी बात निकाल लेती हैं और आपकी मिसाल जरूर देती हैं। सब बेटियों में आप ही से सबसे ज्यादा बंधी लगती हैं। ऐसा क्या है जो आप एक बार भी उनसे मिलने का वक्त नहीं निकाल पाई, पूछ लिया प्रिया ने। वीणा एकाएक कुछ नहीं बोल पाई। प्रिया ने तब फिर कहा, अमित के कितने दोस्त यहां रहते हैं, सब साल में एक दो महीने के लिए जरूर आते हैं इंडिया। एक मित्र तो ऐसा है जिसका कोई सगा संबंधी अब नहीं बचा वहां, फिर भी चला आता है अपनी यादें ताजी करने, और किसी को नहीं तो अमित से मिलने। तब वीणा ने कहा, सभी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं प्रिया, तुम्हारे जीजा जी को जैसे इंडिया के नाम से बुखार चढ़ जाता है, कई कड़वी यादें हैं उनकी जिन्हें वह भुलाए बैठे हैं, यही कहते हैं हर बार, वहां जाऊंगा फिर लिपट जाएंगी सब, कोई नहीं है ऐसा जिसके लिए इंडिया जाऊं। वीणा ने शब्द जैसे उधार लिए थे अरुण से, अपना जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं था उसका। तब प्रिया ने कहा, उन कड़वी यादों से ही निकलकर उन्होंने आपको भी तो ढूंढा था, आपको पा लिया, अपना परिवार बसा लिया, यही संसार है उनका, और उस संसार में आपका अपना अस्तित्व भी तो है, वहां जो आपके अपने हैं उनमें तो कुछ कड़वापन नहीं, उनमें तो मिठास ढूंढी जा सकती है, अब तो हम सब लोग उनके अपने हैं। रिश्ते समझने की चीज है, रिश्ते अपनाने के लिए बनते हैं, और उनके लिए कुछ ना कुछ भूलना भी पड़ता है। प्रिया ने समझे वीणा के मनोभाव और समझा उन शब्दों में छिपे भावों का अर्थ, उसी लय में उसने शब्द बांध लिए थे, लेकिन वीणा किस मिट्टी की बनी थी वह समझना शायद उसके बस की बात नहीं थी। वीणा को लगा वह प्रिया से लंबी बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है, ऐसे में बात समाप्त करते हुए बोली, अभी इस विषय पर बात नहीं करते, तुम ही पूछ लेना अपने जीजा जी से, सब बात समझ आ जाएगी, चलो अब सो जाओ, सफर की थकान मिटा लो, अभी बहुत दिन हैं साथ, सब समझ आ जाएगा। और वीणा प्रिया को उसके कमरे तक छोड़ आई जहां अमित पहले से सोया हुआ था।